عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة التطفیف کے معروف مسائل ہمارے چل رہے ہیں اس کلاس کے اندر. پچھلے کلاس میں ہم نے پیج نمبر 698 کے اوپر جو روح کی تحقیق حضرت نے لکھی تھی وہ پڑھی تھی. کسی کو کوئی سوال ہے اس کے اوپر؟ جی، سب سمجھ میں آ گیا تھا سب کو؟ روح کی تحقیق لکھی ہے تو ذرا بتائیں پھر روح کتنی قسموں کی ہوتی ہے. اس تحقیق کے مطابق روح کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کیا فرق ہے ان دونوں قسموں کے درمیان؟ جی، کوئی بتا سکتا ہے روح کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ نہ بھی نہیں یاد روح کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آسان سی بات ہی ہے. تو اتنا لمبی تفصیل لکھنے کی کیا ضرورت ہے، بس دو لکھ کر کے انٹر کر دیں تاکہ جواب جلدی مل جائے اور آگے چل سکیں. ٹھیک ہے، تو روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اچھا، کون کون سی دو قسمیں ہوتی ہیں اور کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو بھی کہنا چاہیں فرق بتا دیں یا کیا قسمیں کہلاتی ہیں یہ. ایک جو اعلان سجین، اچھا الیین سجین، اچھا ایک قسم وہ ہوتی ہے جو کہ الیین یا سجین میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری قسم روح کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ عالم برزخ میں ہوتی ہے. عالم برزخ میں تو جب مرتے ہیں تب جاتے ہیں نا، مرنے سے پہلے کدھر ہوتی ہے؟ جب ہم زندہ ہیں تو اس وقت بھی تو روح ہوتی ہے نا، روح تو موجود ہے. زندگی تو روح کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. تو عالم برزخ جو آپ نے جواب دیا تو وہ تو اس وقت پہنچتی ہے جب انسان اس دنیا سے انتقال فرما جاتا ہے، لیکن جب انتقال نہیں فرماتا تو اس وقت یہ روح کدھر ہوتی ہے؟ ہاں، جسم میں ہوتی ہے، جسم کے ساتھ ہوتی ہے، جسم کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ روح جو ہے وہ جسم کے اندر ہوتی ہے، اور اس روح کو انہوں نے کہا روح مجرد. روح مجرد کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے لکھا. اور اس کے لیے دوسرا نام جو ہے وہ نفس کا بھی استعمال کیا. ٹھیک ہے، کہ اس کو نفس بھی کہتے ہیں، انسان کا کہہ دیتے ہیں انسان کا نفس. ٹھیک ہے، یا یتوہن، یا ایتوہن نفس المطمئنہ. ٹھیک ہے، یا وہ کہہ دیتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء. ٹھیک ہے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، یا نفس لوامہ، تین اس کی حالتیں کہلائی. یا یہ کہ پورے کے پورے جو وجود ہے اس کو بھی نفس کہتے ہیں. پورا جو ہمارا وجود ہے نا، تو اس کو بھی نفس انسانی کہتے ہیں. تو اس کو یعنی نفس انسانی ہی سمجھیں. ٹھیک ہے، یعنی ہمارا نفس. اچھا، تو یہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ اور پھر روح جو الیین اور سجین میں جو روح ہوتی ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے؟ کیا ان میں رشتہ ہوتا ہے؟ کیا یہ ڈس جوائنٹ ہیں بالکل؟ یہ ایک الگ چیز ہے اور وہ ایک الگ چیز ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. या इनका आपस में कोई ताल्लुक होता है, तो उस ताल्लुक को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि रूह है मुजर्रद और जो वो है रूह रूह। एक्चुअली रूह है मुजर्रद तो मैं गलत कह रहा हूँ, रूह है मुजर्रद तो वो रूह होती है जिसको कि नफ्स कहते हैं, जो जिस्म में होती है या मौत के बाद आलम में बरज़ख में चली जाती है, तो उसको रूह मुजर्रद कहते हैं और इसी को रूह रूह भी कहते हैं। ठीक है, यानी रूह रूह मुजर्रद इज इक्वल टू रूह रूह। ठीक है, रूह मुजर्रद इज इक्वल टू रूह रूह। और ये जो जिस्म के अंदर रूह होती है इसको क्या कहा, इन्होंने कहा जिस्म लतीफ, इसको जिस्म लतीफ कहा और इसको नफ्स भी कहा। अच्छा, इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या होता है, ताल्लुक क्या होता है, ये किसी को पता है? चले, ये तो हमने एक्चुअली डिस्कस किया भी नहीं था। ठीक है, इन्होंने इसका ताल्लुक जो है वो इतना कह दिया है कि इस ये ताल्लुक कैसे है ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं कि ये ताल्लुक कैसे है। ठीक है, तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि दूसरी रूह का इस पहली रूह से ताल्लुक करीब तो है मगर इस ताल्लुक की हकीकत अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो ताल्लुक यानी हकीकत किसी को नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा बहुत तो इन्होंने भी लिखा था ना इसका। ठीक है, थोड़ा बहुत ताल्लुक के बारे में ये इन्होंने भी लिखा था, जो कि ऊपर है थोड़ा सा, इसी पैराग्राफ में थोड़ा सा ऊपर है कि इस राबते की हकीकत यानी रूह रूह में और रूह लतीफ में, जिसमें लतीफ में क्या क्या ताल्लुक है, तो इस क्या यानी क्या राबता है, क्या कनेक्शन है। तो इस राबते की हकीकत तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता, यानी राबते की हकीकत से मुराद ये है कि भाई ये जो असल रूह है, रूह रूह जिसको कहते हैं, और ये जो जिस्म के अंदर रूह है, तो इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है ना, कैसे कम्युनिकेशन होता है, यानी क्या मैसेजिंग मैसेजिंग कैसे होती है। ठीक है, सिग्नल्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, कैसे कंट्रोल होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप आपके घर में बच्चे के पास एक वो होती है ना रिमोट गाड़ी होती है। ठीक है, रिमोट गाड़ी का एक रिमोट कंट्रोल भी तो होता है ना। ठीक है, अब रिमोट कंट्रोल जो है वो कभी आपने देखा होगा कि जो रिमोट गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी का रिमोट कंट्रोल, इन दोनों के दरमियान एक तार होता है। ठीक है ना, तार होता है ना। तो क्या कहेंगे कि जी ये जो कम्युनिकेशन है गाड़ी में और रिमोट कंट्रोल में, ये वायर बेस्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, और कभी ऐसा होता है कि ये वायर बेस नहीं होती बल्कि वायरलेस होती है। ठीक है, तो वायरलेस यानी रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो कि ये रिमोट कंट्रोल से निकलते हैं और गाड़ी के अंदर जाते हैं, तो इसको रेडियो सिग्नल्स कहते हैं। आज के दौर में इन रेडियो सिग्नल्स की एक थोड़ी सी डिफरेंट शक्ल भी आ गई जिसको वाईफाई कहते हैं। ठीक है, तो कुछ आपने देखा होगा डिवाइसेस जो है अब घर के अंदर ऐसी यानी ऐसी शुरू हो गई हैं कि जिनका जो रिमोट कंट्रोल होता है ना वो वाईफाई कंट्रोल्ड होता है, यानी वो डिवाइसेज जो होती हैं वो वाईफाई कंट्रोल्ड होती हैं। रिमोट कंट्रोल से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने सेलफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन मैकेनिज्म क्या कहलाएगा, वाईफाई कम्युनिकेशन मैकेनिज्म कहलाएगा। तो तीन मैकेनिज्म्स हो गए ना, एक वायर बेस्ड मैकेनिज्म है, एक जो है वो रेडियो बेस्ड मैकेनिज्म है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड, और एक जो है वो वाईफाई बेस्ड मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है कि भाई जो असल रूह है जो कि इल्लीजीन में होती है या सिजीन में होती है, ठीक है, उस रूह में और जो हमारे जिस्म में रूह रूह मौजूद है, तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायर बेस्ड कम्युनिकेशन है, वाईफाई बेस्ड कम्युनिकेशन है या किसी और किस्म का कम्युनिकेशन है। तो इसका जवाब उन्होंने ये लिखा है कि इसकी हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, इसकी हकीकत अल्लाह ताला जानता है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है इसकी जाहिरी सूरत क्या बनती है, वो जाहिरी सूरत उन्होंने लिखी है। ठीक है, वो क्या है कि इस राबते की हकीकत तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। ठीक है, मगर जिस तरह आफताब महताब आसमान में हैं और उनकी शुआएं जमीन पर पड़कर उसको गर्म भी कर देती हैं, रोशन भी कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो होता क्या है कि जो हमारे अंदर जो रूह है ना, ये रूह जो है वो एक तरह से साया है, साया शेडो जिसको कहते हैं ना, साया। ठीक है, असल रूह का ये साया है, असल रूह का ये शेडो है, और साए के बारे में आपको मालूम है कि साया जो होता है वो अपनी हकीकत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हकीकत जो होगी वो जैसे जैसे करेगी वैसे वैसे साया भी करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा साया जमीन पर पड़ता है ना, ठीक है, तो अब हम अगर खड़े होते हैं तो साया भी खड़ा हो जाता है, अगर हम बैठ जाते हैं तो साया भी बैठ जाता है, ठीक है, अगर हम चलना शुरू हो जाते हैं तो साया भी चलना शुरू हो जाता है, दौड़ना शुरू हो जाते हैं तो साया भी दौड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो साया तो नहीं दौड़ रहा, साया तो नहीं चल रहा, साया तो नहीं बैठ रहा, असल में तो हम बैठ रहे हैं ना, हम खड़े हो रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो रूह रूह है ना, जो कि इलियीन या सिज्जीन में होती है, असल में जो मामला हो रहा होता है वो उसके साथ हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो असर पड़ रहा होता है वो इस साये के ऊपर पड़ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो रूह हमारे अंदर मौजूद है ना, ये असल रूह का साया है। ओके, अच्छा, अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं मजीद इसके ऊपर वक्त नहीं लगाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, और अगर सवाल है तो फिर सवाल के हिसाब से देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आगे चलते हैं कि इसके बाद जो आयत थी वो थी वफी ज़ालिका फलयतनाफ़सुल मुतनाफिसून, ठीक है। तो अल्लाह ताला इसमें क्या फरमाते हैं कि यानी इस पर चाहिए कि मुकाबला करें, मुकाबला करने वाले लोग, ठीक है ना, इस चीज के लिए मुकाबला करें, इस चीज के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, सबकत ले जाने की कोशिश करें, वो लोग जो कि सबकत ले जाने वाले हैं, ठीक है। किस चीज के बारे में, जैसे कि पीछे जन्नत के अहवाल बयान किए थे अल्लाह ताला ने कि इन्नल अब्रार लफी नईम, कि बेशक नेक लोग आराम में हैं, नेमतों में हैं, जन्नत के अंदर नेमतों में हैं, अलल अराइक यंजुरून, तख्तों पर बैठे देखते होंगे, तारिफू फी वजूहिहिम नज़रत नईम, तू इनको पहचान लेगा इनके चेहरों की तरोताजगी से, युस्कौन मिन रहीकिन मख्तूम, वो पिलाए जाएंगे एक शराब खालिस मुहर लगी हुई, खितामहू मिस्क, कि जिसकी मुहर जो है वो मुश्क पर जमती है, मुश्क से बनी हुई मुहर है वो। वफी ज़ालिका फलयतनाफ़सुल मुतनाफ़िसून, और इसमें चाहिए यानी इन चीजों को हासिल करने के लिए चाहिए कि हम एक के इंसान एक दूसरे से रगबत करें, ठीक है। तो अब इसकी तफसीर में फरमा रहे हैं कि तनाफसा के मानी है चंद आदमियों का किसी खास मरगूब और महबूब चीज के हासिल करने के लिए झपटना और दौड़ना, ठीक है, ताकि दूसरों से पहले वो उसको हासिल कर लें, ठीक है। तो इसको जो है वो तनाफसा कहते हैं, झपटना और दौड़ना। जैसे कि आपने सुना होगा पिछले साल तो हमारे मुल्कों के अंदर भी बहुत इसके ऊपर शोर मचा, ठीक है, ब्लैक फ्राइडे, ठीक है, ब्लैक फ्राइडे का कॉन्सेप्ट तो आप पता ही लग गया होगा लोगों को कि ये अमेरिका के अंदर एक फ्राइडे होता है शायद दिसंबर के महीने के अंदर या नवंबर के महीने में, ठीक है। तो उस फ्राइडे को जो है ये ब्लैक फ्राइडे क्यों कहते हैं, क्योंकि उस फ्राइडे में सेल लग जाती है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स के अंदर, और बाकी भी लोग स्टोर्स ने जो है वो सेल लगानी शुरू कर दी है, ठीक है। तो अब होता क्या है वहां पर कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स होते हैं ना जिनमें खास तौर पर सेल लगती है, तो लोग जो हैं वो रात को आकर के, ठीक है, रात को आकर के उस सेल वाले दिन से पहले वाली रात जो होती है वहां पर पार्किंग लॉट के अंदर अपना बिस्तरा लगा लेते हैं, ठीक है ना, अपना वो कोई ट्रैवल बेड वगैरह टाइप की चीज लेकर आते हैं, हत्ता कि कोई लोग टेंट्स भी लेकर के आते हैं, कोई जिस तरह से भी आकर के वहीं पे अपना बोरिया बिस्तर बिछा लेते हैं और वहीं पे जो है वो कयाम करते हैं। वो किस लिए, ताकि सुबह को जब ये स्टोर खुलेगा ना तो उसमें जो है वो सबसे पहले दाखिल हो जाए। सबसे पहले दाखिल हो जाने का मतलब क्या कि जो सेल के ऊपर सारे आइटम्स होंगे तो उनमें सारे आइटम्स को खत्म होने से पहले ये खरीद लें, ठीक है। तो क्योंकि जब दरवाजा खुलता है ना तो उस वक्त जो है वो लोग दौड़ते हैं, भागते हैं उसके, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी किया नहीं, मैंने सुना है लोगों से कि ऐसा होता है उधर, ठीक है। तो लोग भागते हैं या रश लगा होता है एक दूसरे को जो है वो धक्के धक्कम पेल भी चल रही होती है वहां पर अमरीका जैसे हसीन मुल्क के अंदर, राइट, धक्कम पेल भी चल रही है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि वहां पर नेमतें मौजूद हैं, ठीक है ना, उस स्टोर के अंदर नेमतें मौजूद हैं जिन नेमतों के लिए ये लोग यानी जिनको हासिल करना चाहते हैं और कम कीमत पर हासिल करना चाहते हैं ताकि ज्यादा खरीद सकें, ठीक है। तो इसके ऊपर ये लोग तनाफसा करते हैं, तनाफसा या तनाफसु मुतनाफिसन, तनाफसन फहुवा मुतनाफिसन, ठीक है। तो ये एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए मरहूब चीजों के एक दूसरे से झपटते हैं। हमारे यहाँ ये क्या होता है, हमारे यहाँ जो है वो इस तरह का ब्लैक फ्राइडे तो खैर अभी शुरू हो गया, अल्लाह माफ करे, ठीक है, तो किसी ने उसका नाम फिर जो है बदल करके मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करी कि ब्लेसड फ्राइडे रख दो, ठीक है, यानी ब्लेसड फ्राइडे रख देने से हम नेक मुसलमान बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ब्लैक फ्राइडे चाहिए तो बहुत बुरी बात है, फ्राइडे तो जो है वो बड़ा बरकत वाला दिन होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन असल में जो कंज्यूमरिज्म की उसके अंदर जड़ है, वो जड़ तो वैसी की वैसी रही है ना, ठीक है। अब आप उसको ब्लेसड फ्राइडे कहें या ब्लैक फ्राइडे कहें या फलाना जो भी फ्राइडे कहें, वो तो दुनिया तलबी वाला जो उसका असल है वो तो आपने खत्म नहीं करी ना। बहरहाल, नाम बदल देने से जो है वो शराब जो है वो हलाल तो नहीं हो जाती। इन एनी केस, हमारे यहाँ जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं वो क्या होता है, आपको शायद तजुर्बा हो कि शादियों के अंदर लोग बैठे होते हैं, ठीक है ना, और फिर एकदम से क्या होता है, ढंडन ढंडन की आवाज आती है, ठीक है। तो वो ढंडन ढंडन की आवाज जब आती है ना, तो उसके बाद फिर सारे के सारे अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं और दौड़ते हैं एक तरफ, कोई इधर दौड़ रहा है कोई इधर दौड़ रहा है, तो क्या करते हैं कि बोटियां किसी तरीके से खत्म होने से पहले हम पकड़ लें, ठीक है ना। बोटियां जो है वो खत्म हो जाएंगी तो हमारे हाथ में नहीं आएंगी, तो इस वजह से लोग जो है वो भागते हैं ताकि कोई रान जो है ना वो छुट ना जाए कहीं, और फिर उसकी वजह से इसी चक्कर के अंदर वो एक रान पे इक्तफा नहीं करते, वो तीन चार राने डाल लेते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद पेट तो उनका दो से भर जाता है, बाकी को जो है वो डस्टबिन में फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो ये काफिर वाली जिंदगी है जो कि हमने इख्तियार करी हुई है, चाहे वो ब्लैक फ्राइडे की शक्ल में हो चाहे शादी के खाने की शक्ल में हो। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम लोग जो है वो इन चीजों में रग़बत करने की बजाय तुम जन्नत की नेमतों में रग़बत करो, ठीक है। तो जन्नत की नेमतों का तذکرہ किया और फिर फरमाया कि फल यतनाफसुल मुतनाफिसून, के ताकि दूसरों से पहले वो उसको हासिल कर ले, ठीक है ना। यानी ये एक ऐसी चीज है जिसमें मुसाबिकत जो है वो जायज है। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के रास्ते को काटें, दूसरे को नाउजबिल्ला जहन्नुम में डालें ताकि वो जो आकर के जन्नत की नेमतें कम ना कर ले। इसलिए कि जन्नत की नेमतों के कम होने का तो कोई तसव्वुर नहीं है ना, वहां पर तो कोई कमी नहीं है, वहां तो जितने आएंगे उतनों को अल्लाह ताला उनके तसव्वुर से बढ़ करके देंगे। तो यहाँ पर तो आप किसी का रास्ता तो नहीं काट सकते ना, बल्कि रास्ता काटने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर तो उसूल ये है कि जो काटने की कोशिश करेगा वो खुद ही जहन्नुम में जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मुसाबिकत करना जो है वो अच्छे अंदाज में, ये अल्लाह ताला चाहते हैं कि इस चीज में रग़बत करें। और सहाबा कराम इस मामले में फिर रग़बत भी क्या करते थे, कैसे रग़बत करते थे कि सहाबा कराम को पता लगा कि जी ये जो सदका खैरात करना है इसके ऊपर जो है वो बहुत अजर मिलता है, ठीक है। तो अब सारे सहाबा अमीर तो नहीं थे कि वो सदका खैरात करें, तो जो गरीब सहाबा थे उन्होंने सोचा कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे सदका करें, हमारे पास तो माल दौलत है ही नहीं, हम सदका कैसे करें। तो पहुंच गए नबी अलैहिस्सलाम के पास कि हम तो पीछे रह जाएंगे, सदका खैरात तो अमीर कर सकते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, तो हम फिर जन्नत की नेमतों में पीछे रह जाएंगे अमीरों से, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको तस्बीहात बता दी, ठीक है, कि भाई तुम ये तस्बीहात पढ़ लिया करो, तुम्हें भी उतना ही सवाब मिल जाएगा जैसे कि अमीरों को सदका खैरात करने से मिलता है, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ताला ने माल दौलत नहीं दिया तो अल्लाह ताला ने कॉम्पनसेट कर दिया तस्बीहात के जरिए से, ठीक है। तो अब जो है ना ये गरीब लोग माशाल्लाह मस्जिद नबवी के अंदर बैठे तस्बीहात करना शुरू हो गए, ठीक है। सादा लोग थे बेचारे, तो जब इनको अमीरों ने देखा तो अमीरों ने कहा जी क्या कर रहे हैं ये, ठीक है। अब उन्होंने पूछ लिया कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो झूठ तो नहीं बोल सकते थे, ठीक है, सच बोलना तो इनकी मजबूरी थी, झूठ तो बोल नहीं सकते थे। तो इन्होंने बता दिया कि हमें जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है कि अगर तुम ये तस्बीहात करोगे तो तुम्हें वही अजर मिलेगा जो अमीरों को मिलता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, माशाल्लाह जो अमीर लोग थे तो उनको किसी ने रोका तो नहीं था ना तस्बीहात करने से, उन्होंने भी तस्बीहात करनी शुरू कर दी, ठीक है। जब उन्होंने भी तस्बीहात करनी शुरू कर दी तो गरीब लोग फिर परेशान, अब हम फिर पीछे रह जाएंगे, राइट। ये अमीर आगे निकल जाएंगे, ये सदका खैरात भी करते हैं तस्बीहात भी करते हैं, तो फिर पहुंच गए नबी अलैहिस्सलाम के पास और फिर कहने लगे कि हम पीछे रह जाएंगे, हम क्या करें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर मुस्कुरा करके फरमाया, ठीक है, कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, कि ये अल्लाह ताला का फजल है, जिसको चाहता है वो देता है, अल्लाह ताला की तकसीम है भाई, हम उस तकसीम को रोक नहीं सकते, ठीक है ना भाई। उनको अगर अल्लाह ताला ने माल दौलत दी है, तुम्हें माल दौलत नहीं दी है, तो अल्लाह की तकसीम है ना, उस तकसीम के ऊपर राजी रहने से भी तुम्हें वही मुकाम मिल जाएगा वैसे तो, ठीक है ना। फिर सहाबा कराम जो राजी की इनको सिफत मिल गई थी ना, रजा की सिफत, तो अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि जी माल दौलत का वो सदका करते हैं कि नहीं करते हैं, भाई रजा जो है वो सबसे बड़ी दौलत है, ठीक है। तो लेकिन नबी अलैहि सलाम मुस्करा करके, क्योंकि इस बात पे नबी अलैहि सलाम को खुशी हुई कि देखो मेरे सहाबा जो हैं वो फल यतनाफसिल मुतनाफिसून के अल्लाह के हुक्म के ऊपर कैसे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कैसे जो है वो उनके दिलों के अंदर रग़बत है जन्नत की नेमतों की, ठीक है ना। तो जन्नत की नेमतें जो हैं ये रग़बत करने की चीज है। और जैसे कि अगर आप में से किसी ने पिछले हफ्ते का बयान सुना होगा जुमे को, इस हादिस ने जो किया था, तो उसमें यही था कि भाई हम सिर्फ इसी चक्कर में ना रहे कि अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, ठीक है भाई, अल्लाह की मोहब्बत के लिए मैं करता हूँ, मैं तो जो करता हूँ अल्लाह के लिए करता हूँ, ठीक है भाई। इसके अंदर कोई हकीकत अगर है तो फिर तो ठीक है, आप बोल सकते हैं कि मैं अल्लाह के लिए करता हूँ, लेकिन असल में हकीकत होती तो नहीं है इसके अंदर, ठीक
ठीक है। तो भाई अल्लाह के लिए करना जो है ना, ये तो एक बहुत ऊंचा मुकाम है, पहले उस मुकाम पर पहुंचे फिर कहें कि हाँ मैं अल्लाह के लिए करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब तक हम उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं, यानी अल्लाह की मोहब्बत का जो मुकाम होता है, शिद्दत की मोहब्बत वाला मुकाम, तो उससे पहले जो जो मुकाम है जन्नत की नेमतों की खातिर नेक अमल करना, तो इसके अंदर शर्म महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर जो है वो एम्बेरस फील करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं तो भाई जन्नत की नेमतों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं जन्नत की हूरों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं जन्नत के जो है वो फल के लिए काम कर रहा हूँ, मैं जन्नत के महलों के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें कोई एम्बेरसमेंट की बात नहीं है, इसमें कोई बुरा फील करने की बात नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला की तमन्ना है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम ये काम करें, ठीक है। जब भी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वल्लाहु यद्उ इला दारिस्सलाम, कि अल्लाह ताला तो दारुस्सलाम यानी जन्नत की तरफ बुलाता है। जब परवरदिगार बुला रहा है तो अब उसकी आगे ना ये बातें करना कि नहीं मुझे जन्नत की तमन्ना नहीं है, मैं तो अल्लाह के लिए सारा काम करता हूँ, ठीक है। तो ये इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। और स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए तो ये बात बिल्कुल ही नहीं सचती। हम बात करें जन्नत की खातिर बात करें, सीधी सी बात करें, ठीक है। अल्लाह की मोहब्बत के अगर हम मुकाम पर पहुंच जाए ना, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो हमारे लिए गुनाह करना तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम तो ऐसी जिंदगी नहीं गुजार रहे ना कि जिसमें गुनाह करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। हमारा तो रगबत ही गुनाहों की तरफ है, हमारा तो दिल ही हर बार चाहता रहता है कि हम गुनाह करें, ठीक है। तो फिर ये कहना कि नहीं मैं तो जो करता हूँ अल्लाह के लिए करता हूँ, तो ये तो झूठ ही है खाली, और अपने आप को फरेब देने से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो जन्नत के लिए काम करना है, जन्नत के लिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फल यतनाफसल मुतनाफिसून, तो फरमाते हैं कि यहाँ जन्नत की नेमतों का जिक्र फरमाने के बाद हम ताला ने गफलत शियार इंसान को इस तरफ मुतवज्जा किया है कि आज तुम लोग जिन चीजों को मरगूब और मतलूब समझकर उनके हासिल करने में दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हो, है ना जी। आजकल क्या आया हुआ है, किसी के पास बैठा हुआ तो कहने लगे आजकल जी S9 आया हुआ है, राइट। सैमसंग का पता नहीं S9 आ गया, या आईफोन का 9 आ गया है, पता नहीं क्या चीज आ गई है, ठीक है। तो अब उसके ऊपर भी हाँ, उसके अंदर ये फीचर भी है, उसमें ये फीचर भी है, और ऐसा भी है, ठीक है। तो इस चीजों के अंदर एक एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हो। ये नाकिस और फानी नेमतें इस काबिल नहीं है कि इनको मकसूद जिंदगी समझ करके उनके लिए मुसाबकत करो, ठीक है। जरूरत समझ करके इनको हासिल कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें जरूरत है, ठीक है, तुम्हारे काम जो है वो इस स्मार्टफोन से बनते हैं, तुम्हारी जरूरियात जो है वो इनसे पूरी होती हैं, ठीक है, तो इनको हासिल कर सकते हो, अगर हलाल है तो हासिल कर सकते हो। लेकिन इन्हीं के बारे में सोचते रहना, इनको मकसूद जिंदगी बनाने ला, मकसूद जिंदगी क्या कि अब कौन सी चीज मार्केट में आई है, अब मैं कैसे जाकर के उसको हासिल करूं, ठीक है ना। इसको मकसूद जिंदगी समझकर इनके लिए मुसाबकत करो, बल्कि इनमें तो अगर तना तो इसार से काम लेकर ये समझ लो कि ये चंद रोजा राहत का सामान हाथ से निकल ही गया तो कुछ बड़े सदमे की बात नहीं है। अगर मैंने लेटेस्ट मॉडल जो है वो फोन का या गाड़ी का या किसी भी चीज का मिस कर दिया तो कौन सी ऐसी बड़ी कयामत आ गई। तो ऐसा खसारा नहीं है कि जिसकी तलाफी ना हो सके। अलबत्ता तनाफुस और मुसाबकत करने की चीज ये जन्नत की नेमतें हैं जो हर हैसियत से मुकम्मल भी हैं और दायमी भी, ठीक है, हमेशा हमेशा की नेमतें और यानी और दायमी भी है, यानी और मुकम्मल भी है, ठीक है। यानी दुनिया की जो नेमतें होती हैं इनके अंदर 10 नुक्स होते हैं, ठीक है। आप जितना ही महंगा सेलफोन खरीद लें, आपका बच्चा उठा करके अगर उसको दीवार पे दे मारे तो वो सेलफोन बचेगा, ठीक है। ऐसा तो सेलफोन मैंने नहीं सुना अब तक इन्होंने बचाया कि आप अगर जोर से उठा करके दीवार पे मार दें तो वो बच जाएगा, वो नहीं बचेगा, वो तो टूट जाएगा ना। या ये कि उसके अंदर कोई वायरस आ जाए या कोई और चीज आ जाए तो ये सेलफोन पे आपके काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो कितना नाकिस है ये सेलफोन, कितनी नाकिस है ये दुनिया की छोटी सी नेमत, ठीक है। उसके अलावा भी आपने BMW के लेटेस्ट मॉडल खरीद दिया या आपने रोल्स रॉयस खरीद ली, यहाँ पर माशाल्लाह रोल्स रॉयस के अंदर बैठ करके ना सड़कों पे घूमते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं ताकि लोग उनको देखें कि रोल्स रॉयस में बैठे हुए जी, ठीक है। तो जब रियाज शहर के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी हो रही होती है और रोल्स रॉयस से निकल करके जब उनको अपने कहवा खाने के अंदर जाना होता है तो क्या उस रोल्स रॉयस के दरवाजा खोलने के बाद से लेकर के कैवे खाने तक क्या उनको रोल्स रॉयस की ठंडक मिल रही होती है? हैं? रोल्स रॉयस से क्या होता है कि रियाज का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, रियाज की जो है वो गर्मी भी खत्म हो जाती है, हैं? या ये कि उनको जो है वो कोई फरिश्ते जो है वो पर पे रख करके उनको कहवा खाने तक पहुंचा सकते हैं। चलना तो पड़ता है ना, बिलाखिर अपने आप को तकलीफ तो देनी पड़ती है ना, ठीक है। तो तकलीफें तो यहाँ पर हर नेमत के साथ लगी हुई है, तो इस नेमत के लिए क्या जन्नत की नेमतों को गंवाना। तो अकबर इलाहाबादी मरहूम ने खूब फरमाया कि ये कहाँ का फसाना है, सूदो जिया, जो गया सो गया, सो जो मिला सो मिला, ठीक है। यहाँ की क्या मसला है, गया गया मिला मिला, खैर اللہ اللہ خیر صلاح، دن گزر ہی جائیں گے. کہو ذہن سے فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا. یعنی اپنے ذہن سے یہ کہو کہ اس دنیا کی ان چیزوں کی یاد مجھے مت دلا کہ جو کہ مجھے میرے پروردگار سے غافل کر دے. اگر تجھے کسی چیز کی یاد دلانی ہی ہے تو مجھے اللہ کی یاد دلا، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے کچھ فائدہ بھی ہو اس سے، دائمی فائدہ حاصل ہو اس سے. تو یہ ایک ایسا مقام ہے نا جس کے اوپر جا کر کے ہم لٹرلی، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے، ٹھیک ہے. اپنے دل سے فتویٰ جو ہے نا وہ اس میں نہیں لینا چاہیے کہ جی سود حلال ہے کہ سود حرام ہے. یہ آپ کا دل آپ کو کیا بتائے گا؟ دل کوئی مفتی صاحب ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بتائے گا کہ جی فلانے بینک کا سود جو ہے، فلانے بینک کا جو اکاؤنٹ ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ اکاؤنٹ ہے کہ نان انٹرسٹ بیسڈ اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فتویٰ دل سے نہیں لینا ہوتا، ٹھیک ہے. دل سے اگر فتویٰ لینا ہے تو اس معاملے میں لو کہ میرا دل جو ہے وہ کن فکروں میں رہتا ہے، میرا ذہن، بلکہ یہ فتویٰ لو کہ میرا ذہن کن فکروں میں لگا رہتا ہے، میری پرائیورٹیز کیا ہیں، میں کیا چاہتا ہوں اپنے لیے، میں اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. واٹ ہیو آئی تھاٹ فار مائی سیلف، واٹ ڈو آئی نیڈ فار مائی سیلف، ٹھیک ہے نا، کیا ہے میری پرائیورٹیز. اس معاملے میں ہم دل سے فتویٰ نہیں لیتے ہیں. اگر ہم لیں نا دل سے فتویٰ تو ہمارا فریب کھل کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، ہمارا دھوکہ، ہمارا فریب کھل کے سامنے آ جائے گا. اس لیے کہ ہم میں سے بہت ایسے ہیں جو کہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا کو جو ہے وہ ملامت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ان لوگوں کو ملامت کرتے ہیں جو کہ دنیا دار کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اپنی پرائیورٹیز اگر ہم دیکھیں تو ہماری پرائیورٹیز کیا ہوتی ہیں، ہم نے بھی یہی کام کیا ہوتا ہے، ہم بھی جو ہے وہ دنیا کو فرسٹ پرائیورٹی پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور دین کو جو ہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ پرائیورٹی پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہماری جو چاہتیں ہوتی ہیں، ہماری جو فکریں ہوتی ہیں، ہماری جو سوچیں ہوتی ہیں، وہ دنیا کی چیزوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، آخرت کے گرد اور جنت کے فکروں کے اندر نہیں لگ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ فتویٰ جو ہے وہ ہمیں کوئی مفتی صاحب نہیں دے سکتے نا، ان کو کیا پتا کہ ہمارے دل میں کیا سوچیں چل رہی ہیں، مفتی صاحب کو کیا پتا، وہ ہمارے دل کو تو ان کو نہیں کھول کے دیکھ سکتے. یہ بات تو ہمارا دل ہی ہمیں بتا سکتا ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اصل میں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کے بعد اچھا یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف اگر ہماری رغبت ہوگی نا تو ہمارا ایمان بچا رہے گا، اور اگر ہماری رغبت ان کی طرف نہیں ہوگی نا تو ہمارا ایمان تو بچنے نہ بچنے کا کیا کہیں، ہماری اولاد کا ایمان ڈیفینیٹلی نہیں بچ سکتا، ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہم اپنی اولاد کو جو دین دے رہے ہوتے ہیں نا، اس دین کے اندر اگر یہ جنت کی نعمتوں کی رغبت نہیں ہے، اگر جنت کی نعمتوں کی رغبت نہیں ہے نا، تو پھر جو دین ہم ان کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ انتہائی بودا دین ہوتا ہے. بودا، بودا سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ بوسیدہ، بہت ہی زیادہ بودا دین، ٹھیک ہے. کیونکہ اس دین کے اندر کیا ہوتا ہے، پانچ نمازیں پڑھ لو، رائٹ، اور جو ہے وہ یہ پردہ کر لو. لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ جی تم جو ہے وہ اچھا پردہ کرنا کا تو ویسے بھی اکثر لوگوں کے یہاں باری نہیں آتی، وہ ہوتا ہے کہ بس بہت ہی زیادہ بے حیائی والی زندگی نہ گزارو، ٹھیک ہے نا. جس کو کہ ہم بے حیائی سمجھتے ہیں، اس بے حیائی سے ان کو ہم روکنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ویسے تو بے حیائی کر رہی ہوتی ہیں، وہ ہماری مرضی سے کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق تو وہ بے حیائی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے اسٹینڈرڈس کے مطابق وہ بے حیائی نہیں کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹینڈرڈس کی بے حیائی نہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو روک ٹوک کرتے ہیں، فلانی جگہ مت جاؤ، یہ نہ کرو اور ایسے نہ کرو اور یہ نہ کرو، ٹھیک ہے. روک ٹوک، ہر وقت روک ٹوک کا دین، ٹھیک ہے نا. ہر چیز کے اندر روک ٹوک، ہر چیز کے اندر یہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، ایسے نہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بہترین آؤٹ پٹ بھی دیں، ٹھیک ہے نا. ہمارا ادب بھی کریں اور دین کا بھی ادب کریں، مسجدوں کا بھی ادب کریں اور قرآن کا بھی ادب کریں، ٹھیک ہے نا. اور یعنی یہ ساری عبادتیں بھی کریں، ساری نیکیاں بھی کریں، ٹھیک ہے، جھوٹ بھی نہ بولیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری ایکسپیکٹیشن جو ہم اپنی اولادوں سے کرتے ہیں نا، ان ایکسپیکٹیشن کی بیسس پر ان کا دین نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے نا. یہ ایکسپیکٹیشن کافی نہیں ہے ان کے دین کو چلانے کے لیے. دین کو چلانے کے لیے کسی انسان کی زندگی کے اندر جنت کی رغبت اور جہنم کا خوف، ٹھیک ہے نا، یہ ہے طریقہ دین کو چلانے کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ کے طریقے سے ہٹ کر کے اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے طرح سے تو دین نہیں چل سکتا. دین تو چلتا ہے جنت کے شوق سے اور جہنم کے خوف سے، ٹھیک ہے نا. جب یہ جنت کا شوق نہیں ہوگا، جہنم کا خوف نہیں ہوگا، تو یہ جو دین ہے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے کسی گاڑی کو دھکا دیا، ठीक है ना। अब गाड़ी के नीचे व्हील्स तो लगे हुए हैं, धक्का देंगे तो वो कुछ ना कुछ तो चल जाएगी ना, न्यूट्रल पे डालें उसको, ठीक है, न्यूट्रल पे डालें उसको, धक्का दें वो थोड़ा सा आगे चल जाएगी, लेकिन क्या वो चलती रहेगी है? क्या वो चलती रहेगी? नहीं चलती रहेगी। क्यों नहीं चलती रहेगी भाई? गाड़ी जो है वो क्यों रुक जाएगी? जरा जरा साइंटिफिक जवाब देना इसका, गाड़ी क्यों रुक जाएगी जब आप उसको अनस्टार्टेड फॉर्म में या बे इंजन के उसको आप धक्का दे दें तो वो थोड़ी सी तो चलेगी लेकिन रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? इंजन स्टॉप है। हाँ, तो इंजन स्टॉप है तो वो चलती क्यों नहीं रहेगी? जी, ये जो सही जवाब दिया माशाल्लाह हमारे साहब ने, ठीक है हमारे साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ठीक है। फ्रिक्शन, जमीन के फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगी, क्योंकि जमीन जो है वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। अब उसको आगे चलाने के लिए धक्के की जरूरत पड़ेगी मुस्तकिल, या तो आप मुस्तकिल उसको धक्का देते रहे, ठीक है ना, या ये कि आप उसके अंदर एक इंजन लगाएं और इस इंजन को स्टार्ट करें। जब वो इंजन स्टार्ट होगा तब वो उस फ्रिक्शन के ऊपर काबू पा सकेगी, फ्रिक्शन के खिलाफ जो है वो आगे चल सकेगी, फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप नहीं होगी। तो इसी तरीके से हमारी औलाद जो है, जिसको कि हम इस दुनिया के अंदर लाने का सबब बनते हैं ना, हम औलाद के दुनिया में लाने का सबब बनते हैं, ठीक है ना। वरना तो पहले वो किधर थे? पहले तो वो आलमुल अरवाह में थे, ठीक है। आलमुल अरवाह में तो ये फ्रिक्शन नहीं होती है ना, आलमुल अरवाह के अंदर ये फैक्टर्स नहीं होते जो दुनिया वाले फैक्टर्स होते हैं। जब वो दुनिया में हमारी वजह से आते हैं, ठीक है ना, हम ही तो अपनी बीवी के पास जाते हैं ना, हम ही तो बीवी के साथ जो है वक्त गुजारते हैं, तो फिर ये औलाद आती है ना, तो हमारा फेल होता है ना ये, ठीक है ना, हमारा अपना फेल होता है ना, जिसकी वजह से कि वो आलमुल अरवा से खींच करके जाए वो इस दुनिया के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब जब हम इस दुनिया में उसको लाने का सबब बने हैं ना, तो अब ये हमारी भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको जो है इस दुनिया से ऐसे चलाएं, इस दुनिया में ऐसे चलाएं कि वो यहां से सिज्जीन में जाने की बजाय इल्लीयीन में जा सकें, ठीक है ना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो अब उनको दुनिया की फ्रिक्शन के ऊपर ओवरकम करने के लिए हमें उनके अंदर एक इंजन लगाना है, ठीक है ना, उस इंजन को स्टार्ट करना है। जब तक ये इंजन नहीं लगेगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, उस वक्त तक उनकी गाड़ी आगे धक्के पे नहीं चल सकती है, ठीक है। तो जब वो बहुत छोटे होते हैं ना, तो दुनिया का फ्रिक्शन उनके ऊपर होता नहीं है, क्योंकि माहौल से वो एक्सपोज नहीं होते ज्यादा, ठीक है, हमारे घर का ही माहौल होता है, हमारा अपना बनाया हुआ माहौल होता है, तो इस वजह से फ्रिक्शन नहीं होती, हमारा धक्का जो है वो फिर भी चलता रहता है। लेकिन जब वो स्कूल जाना शुरू होते हैं, ठीक है, जब वो थोड़े से बड़े होते हैं, उनके अपने फ्रेंड्स बनते हैं, तो ये जो फ्रिक्शन है ये बढ़ जाता है, ये दुनिया का फ्रिक्शन बढ़ जाता है। अब अगर उनके अंदर एक 6x6 या 4x4 का इंजन नहीं लगा हुआ होगा तो वो खुद आगे नहीं चल सकते, वो नहीं चल सकेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये इंजन क्या है? ये इंजन जो है वो जन्नत का शौक और जहन्नुम का खौफ है, ये है वो इंजन, ठीक है। और अगर ये इंजन उनके पास नहीं होगा तो आप जो है वो उनको धक्का देकर के जो है वो समझ रहे होंगे उनकी गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन उनकी गाड़ी खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है ना, उनकी गाड़ी आगे नहीं चल सकती, दीन वाली गाड़ी आगे नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसके लिए खुद अपने अंदर भी जन्नत का शौक और जहन्नुम का खौफ जब तक नहीं पैदा करेंगे, तो उस वक्त तक हम किसी और को क्या ये खौफ और शौक ट्रांसफर करेंगे। तो अल्लाह ताला अपने कुरान के अंदर हमें बार बार ये चीजें याद दिलाते हैं कि जन्नत का शौक तुम्हारे अंदर होगा तभी तुम चलोगे, जहन्नुम का खौफ होगा तभी तुम बचोगे, ठीक है। लेकिन हम कुरान से एंगेज ही नहीं होते, हम तो कुरान को पढ़ते ही नहीं है, जहां पे कुरान की बात हो रही होती है हम वहां पे फटकने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि वहां से जो है वो छुप छुपा करके कहीं और चले जाते हैं खाना खाने के लिए, राइट। जुमे की महफिल होती है, वहां पर जो है वो कुरान की किसी आयत की तफसीर बयान कर रहे होते हैं और जुमे की महफिल से जो है वो गायब हो जाते हैं, हालांकि 5 मिनट दूर रहते हैं जहां पर महफिल हो रही होती है, लेकिन महफिल में आने की बजाय कहीं और या ऑनलाइन सुन लेते हैं। भाई ऑनलाइन सुनने से अगर आपकी बचत हो सकती होती तो फिर उससे तो नहीं होता ना, ठीक है। अल्लाह ताला तो हर चीज को वे करते हैं कि जी किसके लिए आना आसान था फिर भी वो नहीं आया, और किसके लिए आना मुश्किल था लेकिन वो आ गया, तो भाई जिसके लिए मुश्किल था वो आ गया तो उसको अल्लाह ताला फिर छप्पर फाड़ के देते हैं, और जिसके लिए आसान था वो नहीं आया तो फिर उसको उसके साथ फिर दूसरा मामला होता है ना, ठीक है, सजा वाला मामला भी तो होता है ना। तो इस वजह से सजा का खौफ जो है ना वो इंसान को चलाता है, और जजा का शौक जो है वो इंसान को चलाता है। अगर ये दोनों चीजें खत्म हो जाएं तो फिर इंसान नहीं चल सकता, ठीक है। दुनिया के अंदर बहुत लज्जतें हैं फ्रिक्शन के तौर पर, बहुत लज्जतें हैं जो कि फ्रिक्शन बन करके हमें भी रोकेंगी और हमारी औलाद को भी रोकेंगी, ठीक है। तो अगर हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अपनी औलाद से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? औलाद जो है वो बढ़ जाएगी आगे दीन के अंदर, ठीक है। ये हमारा वहमो गुमान है, खाली वहम है ये हमारा, ٹھیک ہے، کہ اولاد جو ہے وہ ایسی بڑھ جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، الٹا کہیں اللہ تعالیٰ نا ناراض ہو کر کے ہماری اولاد کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنا دیں، ٹھیک ہے، ہماری اولاد کے دل کو جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف اگر موڑ دیں نا، تو ہمارا جو کہتے ہیں نا ہمارا باپ بھی ان کے دل کو نہیں واپس موڑ سکے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں ان کے دل کو واپس نہیں موڑ سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو کہ دلوں کو موڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنی خاطر بھی اور اپنی اولاد کی خاطر بھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہتے ہیں کہ یہ مولوی جو لوگ ہیں، یہ علماء جو ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، ہے نا، اس آیت کا ترجمہ کریں آج کے اعتبار سے، کہتے ہیں کہ مولوی لوگ تو پاگل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان علماء کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آج کل یہ الفاظ بھی سننے کو مل رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی ان آیات میں حق تعالیٰ نے اہل حق کے ساتھ اہل باطل کے طرز عمل کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ کفار اہل باطل مومنین اہل حق پر استہزاءً ہنستے اور دل لگی کرتے ہیں، اور جب اہل حق ان کے سامنے آتے ہیں تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو آنکھ کے اشارے کرتے ہیں، جس سے مقصود بھی ان کی استہزاء اور ایذا رسانی ہوتی ہے. پھر جب یہ کفار اہل باطل اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوٹتے ہیں تو مومنین کے ساتھ جو تمسخر اور استہزاء کیا ہے، اس کا باہم تذکرہ مزے لے کر کرتے ہیں کہ ہم نے خوب ان لوگوں کو ذلیل کیا، اور جب یہ کفار مومنین کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ہمدردی کے لہجے میں اور در حقیقت تمسخر کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ بیچارے بڑے سادہ لوح بے وقوف لوگ ہیں، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے کے مولوی کون تھے؟ اس زمانے میں تو ایک ہی مولوی تھے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا، تو اس زمانے میں پھر وہ کسی اور مولوی کو تو قصوروار ٹھہرا ہی نہیں سکتے تھے نا، ایک ہی مولوی تھے، ایک ہی عالم تھے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی معلم تھے، تو ان کو پھر اس طرح سے بولتے تھے کہ اس عالم نے جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا، جیسے یہ خود گمراہ ہوا ہے اسی طریقے سے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا ہے. دنیا کی جو ڈیمانڈز ہیں، ڈیمانڈز آف ٹائم، وقت کے تقاضوں کے ساتھ یہ لوگ نہیں چلتے، ٹھیک ہے نا، ان کو تو 1400 سال پرانی باتیں یاد آتی ہیں، یہ تو ہمیں بھی جو ہے وہ 1400 سال پرانے وقت میں لے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، ہم نے سنی بھی ہیں، ہم نے پڑھی بھی ہیں ایسی باتیں اپنے دوستوں سے، اپنے الحمدللہ دوست تو وہ نہیں تھے، لیکن ہاں کلاس میٹس قسم کے لوگوں سے ہم نے باتیں سنی ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ جو بےچارے کچھ لوگ تھے، ٹھیک ہے، زمانے کے اندر جنہوں نے کہ دین قائم کرنے کی کوشش کری، تو ان کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو 1400 سال پرانا لے جانا چاہتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، تو اب دیکھ لیں آج ان کا حشر، جن کو جو کہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے ان کا کیا بنا. بہرحال آج کل کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت وہ لوگ، ٹھیک ہے، آج کے دور کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ جو کچھ نئی تعلیم کی نحوست سے، نئی تعلیم، یہ جو اسکولوں کالجوں کے اندر تعلیم ہوتی ہے، چاہے وہ پیلے اسکولوں میں ہو، چاہے وہ گورے اسکولوں میں ہو، چاہے وہ نیلے اسکولوں میں ہو، جو بھی اسکول ہو، جس کے اندر بھی یہ والی نظام تعلیم ہے جو کہ یورپ سے بن کر کے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو نئی تعلیم کہتے ہیں. تو نئی تعلیم کی نحوست سے دین اور آخرت سے بے فکر ہو چکے ہوتے ہیں، خدا اور رسول پر ایمان برائے نام رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں، جب ہم اسکول میں تھے تو ہماری جو اسلامیات کی کتاب ہوتی تھی وہ سب سے پتلی کتاب ہوتی تھی، اور باقی کتابیں جو ہیں وہ سب سے موٹی موٹی کتابیں ہوتی تھیں. اب ویسے اب ذرا ان کو عقل آ گئی ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ دھوکہ دینے کی خاطر اسلامیات کی کتاب کو بھی موٹا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسلامیات کی کتاب کو موٹا کر دیا ہے تاکہ یہ جو دیندار ہوتے چلے جا رہے ہیں لوگ، یہ خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ خوش ہو جائیں کہ جی دیکھو اسلامیات کی بھی موٹی کتاب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ان کا دھوکہ ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا. کیا دھوکہ ہے کہ ذرا بتائیں، اسلامیات کی کتاب موٹا ہونے میں کیا دھوکہ ہے، ذرا بتائیں نا اس کا جواب. اسلامیات کی کتاب موٹا ہونا تو بظاہر اچھی چیز لگتی ہے، کیونکہ ہم پتلا ہونا جو ہے وہ بطور عیب کے بیان کر رہے ہیں، تو موٹا ہونا تو پھر خوبی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی خوبی نہیں ہے، وہ بھی دھوکا ہے، کیسے بھائی. خیر میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اور میرے سوال کے اگر کوئی جواب دے تو وہ اپنی طور پر ضرور سے دے، کہ کتاب بھی سب سے پتلی ہوتی تھی، اور اس کتاب کو پڑھانے والی جو ٹیچر ہوتی تھی نا، پتہ ہے وہ کون تھی؟ وہ ہمارے اسکول میں جو ٹیچر ہوتی نا، جو اسلامیات کی کتاب پڑھاتی تھیں، وہ ٹیچر ہی قادیانی تھی، پتہ ہے آپ کو. مزے کی بات، ٹھیک ہے، تو ذرا جواب دے نا، یہ موٹی کتاب میں کیا عیب ہے؟ یہ مولوی لوگ کبھی کسی حال میں خوش نہیں رہتے ہیں، پتلی کتاب ہو تو اعتراض کرتے ہیں، موٹی کتاب ہو تو اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا جواب ہے جی اس کا؟ مولویوں کے پاس لیکن جواب ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پوچھتے نہیں ہیں، لوگ پوچھتے نہیں ہیں. अच्छा, आप क्या फरमा रहे हैं कि कभी कभार वालिदैन नेक साले होकर भी उनके बच्चे नाफरमान होते हैं, इसकी वजह क्या होती है? वालिदैन नेक साले होते हैं का मतलब आपका ये होना चाहिए कि वो सुन्नत के मुताबिक नेक साले होते हैं, ठीक है ना। नेक साले होने का मतलब खाली नहीं, ये नहीं होता कि वो जरूरत जरूरी जो है वो सुन्नत के मुताबिक भी चल रहे हों, ठीक है। खाली उम्रे लगातार धड़ाधड़ करते रहना, इससे इंसान नेक साले नहीं हो जाता, ठीक है। खाली जो है वो जाहिरी इबादतें कर लेना और अंदर से जो है वो झूठ मकारी दुनिया तलबी ये सारी चीजें चल रही है, तो इससे इंसान नेक और साले नहीं होता, ठीक है। तो नेक साले को तो पहले हम डिफाइन करें कि नेक साले का मतलब क्या है, ठीक है। तो नेक साले का मतलब ये होता है कि सुन्नत के मुताबिक जो कि सारे मामलात करें, जिसके अंदर औलाद की सही परवरिश भी होती है, ठीक है ना, और जन्नत का शौक और आखिरत का खौफ ये भी होता है। सिर्फ इबादत नहीं होती बल्कि जन्नत के शौक में इबादत करना और आखिरत के खौफ से गुनाहों से बचना, ठीक है ना। ये सारी की सारी इक्वेशन जब मिलती है ना, तब बंदा नेक साले होता है। अच्छा, ऐसे बंदे की औलाद उमूमन नेक होती है, ठीक है, उमूमन जो है नेक होती है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे की औलाद भी बद हो सके, बद हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए तो हमारे पास बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद है कि ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी मिसाल क्या है, आदम अलैहि सलाम का बेटा था ना, वो जो काबिल था जिसने कत्ल किया अपने बेटे को, तो आदम अलैहि सलाम की नेकी में कोई शुबा है आपको? फिर उसके बाद और कौन सी बड़ी मिसाल आती है, हजरत नूह अलैहि सलाम की मिसाल, ठीक है, कि नूह अलैहि सलाम जो है उनका एक बेटा जो था वो काफिरों के साथ था, बीवी भी बल्कि काफिर के साथ थी, ठीक है ना। उसी तरीके से और भी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। तो ये एक्सेप्शन होते हैं, और ये एक्सेप्शन क्यों होते हैं, एक रीजन उसकी ये होती है कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाना चाहते हैं कि भाई जो कुछ भी हो आई एम स्टिल इन कंट्रोल, ठीक है ना, तुम मुझसे मेरा ये कंट्रोल छीन नहीं सकते। ये नहीं कि तुम जो चाहोगे वैसा हो जाएगा, नहीं, तुम जो चाहोगे वैसा नहीं होता, मैं जो चाहूंगा वैसा होगा। तो अल्लाह ताला एक्सेप्शंस के साथ पर हमें ये लेसन देते रहते हैं। लेकिन चूंकि एक बात अल्लाह ताला ने उसूली तौर पर बयान भी फरमा दी ना कि अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करते, ठीक है ना। तो अब ये जो औलाद अगर बद हो गई है ना वालिदैन के नेक होने के बावजूद, तो इसकी फिर वजह क्या बनती है? इसकी वजह इनकी अपनी जो है वो नफ्स की सरकशी होती है, ठीक है, कि वालिदैन ने तो सब कुछ पूरा पूरा किया होता है, ठीक ठीक किया होता है, लेकिन इनका अपना नफ्स तो इंडिपेंडेंट है ना। ऐसा तो नहीं है कि वालिदैन जो है वो नफ्स को कंट्रोल कर सके, वालिदैन जो है वो इनकी अकल के इख्तियार को जो है वो सल्ब कर लें और जो वालिदैन चाहते हैं वही इनकी अकल जो है वो फैसला करना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अकल तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को इंडिपेंडेंट दी है, ठीक है। तो वो जो औलाद बद निकल आती है नेक साले के घर के अंदर, तो उसकी वजह यही बनती है कि वो अपने फैसले जो है वो गलत करना शुरू हो जाती है, शैतान के इन्फ्लुएंस में आ जाती है, दुनिया की मोहब्बत उसके अंदर आ जाती है, इस वजह से वो बुरे रास्ते के ऊपर चल पड़ती है। तो लेकिन ये रूल नहीं होता, ये एक्सेप्शन होती है, ठीक है। बाकी जो मैंने सवाल किया था इसका जवाब आपने दिया, एडिशन, ये तो मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सेक्युलर थॉट्स इन इस्लामिक बुक्स, हाँ ऐसा भी होता है कि वो इस्लामिक बुक्स के नाम से तो इस्लामिक बुक्स होती हैं, लेकिन अंदर उन्होंने बिटवीन द लाइन्स उन्होंने सेक्युलर थॉट्स डाले हुए होते हैं, या उन्होंने ऐसी बातें डाल दी होती हैं कि जो कि दीन इस्लाम की बुनियादों के खिलाफ होती हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ स्कूलों के अंदर हमने देखा है ये किताबें पढ़ाते हुए कि 7th ग्रेड की बुक है और उसके अंदर मुशाजरात सहाबा के वाकयात डाले हुए, ठीक है, सहाबा कराम के दरमियान जो जंगें हुई थी, जंगे सिफीन और जंगे जमल, ठीक है, इसका वाकया 7th ग्रेडर को पढ़ा रहे हैं। अब ये 7th ग्रेडर को पढ़ाने की चीज ही नहीं है, इसलिए कि ये एक मुश्किल टॉपिक है, ये टॉपिक जो है वो बड़े बड़ों को मुश्किल से समझ में आता है कि सहाबा कराम में कैसे जंगे हो सकती हैं, ठीक है। 7th ग्रेड के बच्चों को अगर आप ये बात पढ़ाने शुरू कर देंगे तो उसके जहन में क्या बात आएगी, यही आएगी ना कि नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया में जाने के बाद क्या हुआ, ये लोग आपस में लड़ना भड़ना शुरू हो गए और जो है वो बुरे हो गए, यानी नबी अलैहिस्सलाम की ट्रेनिंग जो है उसका इनके ऊपर असर ही नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बात ये कि ये जो सहाबा हैं, हमारे पास जो दीन पहुंचा है सहाबा के थ्रू पहुंचा है ना, अगर सहाबा की पर्सनालिटीज को आपने इतना मशकूक बना दिया तो अब उनका एतमाद ओवरऑल दीन पर से खत्म हो जाएगा। तो मुशाजरात सहाबा को 7th ग्रेड की किताब के अंदर डालने की और कोई वजह समझ में नहीं आती सवाए इसके कि वो उस मोटी इस्लामियात की किताब के जरिए से असल में तालिबे इल्मों को गुमराह करना चाहते हैं, दीन से बदजन करना चाहते हैं, क्योंकि सहाबा कराम से बदजन करने का मतलब जो है वो दीन से बदजन करना है, ठीक है, एक ये रीजन है। तो इस तरह से आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। These books promote self-study Islam instead of connecting with ulama. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں سیلف اسٹڈی اسلام, لیکن ایکچولی یہ کتاب جو ان کے اسکول میں پڑھائی جاتی ہے تو کون پڑھاتا ہے, خود تو نہیں ان کو بچوں کو پکڑا دیتے نا کتابیں, ٹیچر ہی پڑھاتے ہیں نا. تو یہ تو کہہ سکتے ہیں چلو جی اس کے اندر الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جی علماء کے خلاف بدزن, بیکاز صحابہ کے خلاف جو بدزن کر رہے ہیں یہ مشاجرات صحابہ کی باتیں ڈال کر کے, تو صحابہ کون ہیں؟ صحابہ علماء ہیں نا, اس دین کے اس امت کے جو پہلے علماء ہیں وہ تو صحابہ کرام ہی ہیں. تو صحابہ سے بدزن کرنے کا مطلب کیا؟ علماء سے بدزن کر رہے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے, موٹی کتاب میں ایڈیشن ہوگا اسلام کے خلاف ماڈرنائز بکس. ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا ہے کبھی, لیکن ایسا اتنا اوپنلی ہوتا نہیں ہے, یہ بڑے ڈھکے چھپے انداز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے صحابہ کے جو اختلافات انہوں نے ڈالے ہیں نا, اب اس کو یہ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ تو حقیقت ہے, یہ تو ہوا تھا اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ جنگیں نہیں ہوئی تھی, جنگیں تو ہوئی تھیں, یہ تو ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, تو اب انہوں وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ یعنی کوئی ایسی بات لکھ رہے ہیں جو کہ ظاہری طور پر بھی غلط ہو. نہیں, وہ ظاہری طور پہ تو غلط بات نہیں لکھ رہے, وہ تو ہسٹری کو لکھ رہے ہیں جیسے کہ ہسٹری کے اندر ہے, لیکن اس ہسٹری کو سیونتھ گریڈر کو پڑھانا یعنی اس لیول پہ پڑھانا یہ غلط ہے. لیکن اب کون اس بات کو آپ سے بائی کرے گا کہ جی سیونتھ گریڈر کو نہیں پڑھانا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر وہ کوئی اور منطقی قسم کے لے آئیں گے, کوئی اس قسم کی ایکسپلینیشن نہیں, نہیں جی جی ہم تو ہسٹری پڑھاتے ہیں, ہم تو سب لوگوں کو ساری ہسٹری پڑھاتے ہیں, تو اسلام کی ہسٹری کیوں نہیں پڑھائیں, اور یہ تو ہوا تھا آپ تو اس کا انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک طریقے سے سائیکولوجیکلی جو ہے نا وہ بدزن کر رہے ہیں, ظاہری طور پہ بدزن نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ظاہری طور پہ تو بڑا اچھا اچھا لگ رہا ہے. اچھا, دوسری انہوں نے کیا لکھا, دیز بکس آر ناٹ پرسکرائبڈ بائی علماء فار چلڈرنز ایج. ٹھیک ہے, وہ تو جو ہم بات کر رہے ہیں اسی کو آپ نے ریفریز کر دیا. لیکن ایک اور بات جو کہ آپ میں سے کسی نے بھی نہیں لکھی, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے کہ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں موٹی اسلامیات کی موٹی کتاب, ٹھیک ہے, تو اسلامیات کی جو موٹی کتاب ہے یہ بتائیں نا ذرا کہ ان سکولوں کے اندر اس اسلامیات کی موٹی کتاب کو پڑھا کون رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے خود بھی اگزامپل دی تھی کہ پتلی کتاب کو بھی پڑھانے کے لیے قادیانی ٹیچر رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو موٹی کتاب کو پڑھانے کے لیے کیا یہ علماء کرام لے کر کے آتے ہیں, علماء حق لے کر کے آتے ہیں, مدارس کے جو جن کی تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے, ایسے علماء تو نہیں آ کر کے پڑھاتے نا. تو یہ پڑھانے والے تو اسی طرح کے سیکولر مائنڈڈ بھی لوگ ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, چاہے وہ قادیانی ہوں یا قادیانی نہ ہوں, لیکن سیکولر مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ شریعت سنت کے پابندی والی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے یہ اصول یاد رکھیں. ٹھیک ہے, میں نے ابھی یوتھ کلاس کے اندر بھی یہ اصول بچوں کو سمجھایا آخر میں. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی ہم بیانات کے اندر اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا. ٹھیک ہے, حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی, ان کا یہ بیان کیا ہوا اصول ہے, بہت زبردست بات فرمائی. ٹھیک ہے, وہ کیا اصول ہے اگر کسی کو یاد ہے تو لکھیں, جب تک میں شعیب صاحب کا کامنٹ پڑھتا ہوں. ان ون آف دا بکس واز ان آور سلیبس, اٹ واز ریٹن دیٹ ابو سفیان واز دا ورسٹ اینیمی آف اسلام اینڈ ناٹ مینشن دیٹ ہی بیکیم مسلم اینڈ ود آؤٹ رائٹنگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ شروع میں تو ہی واز دا ورسٹ اینیمی آف اسلام نا, بیکاز جب ابو جہل اور یہ سارے کے سارے بدر کی جنگ میں مر گئے, ٹھیک ہے, قتل ہو گئے, تو پھر ایک ابو سفیان ہی بچ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہی جو ہے وہ سردار تھے مشرکوں کے اس وقت. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بھی انہوں نے جو لکھ دیا نا, اس کو بھی آپ چیلنج تو نہیں کر سکتے نا, کیونکہ اب وہ کہیں گے کہ جی یہ تو ہم نے ان کے کفر کے زمانے کی بات لکھی ہے. ٹھیک ہے, تو کفر کے زمانے کی بات جو ہے اس میں تو یہی تھا کہ وہ ہی واز دا ورسٹ اینیمی آف اسلام آف ہز ٹائم. بعد میں جو ہے جب انہوں نے توبہ کر لی اور مسلمان بن گئے تو پھر اس کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, تو یہ ٹھیک ہے جی, اس کو ایسے نہیں لکھنا چاہیے, لیکن اس کے بارے میں نا آگے سے آرگومنٹیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے ظاہر ہے بچوں کو کنفیوز کرنے کا, بھی کہہ سکتے ہیں چلیں. اسلامک بکس شوڈ بی آتھورائزڈ بائی اسلامک اسکالر. نہیں, اصول کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو گرہ سے باندھ لیں. ٹھیک ہے, گرہ سے باندھ لیں اس اصول کو. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر استاد نیک مومن ہو, اگر استاد مومن ہو, ٹھیک ہے, یعنی مومن سے مراد مومن کامل ہو, تو وہ انجیل پڑھا کر بھی طالب علم کو مسلمان بنا سکتا ہے؟ اگر استاد ایمان والا ہو تو وہ انجیل پڑھا کر بھی طالب علم کو مسلمان بنا سکتا ہے، اور اگر استاد کافر ہو یا منافق ہو، ٹھیک ہے، کافر، منافق، فاسق، فاجر، جو بھی کہنا چاہیں، تو وہ قرآن پڑھا کر بھی طالب علم کو کافر بنا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یاد رہے گا، اگر استاد مومن ہو تو وہ انجیل پڑھا کر بھی طالب علم کو مسلمان بنا سکتا ہے، اور اگر استاد کافر، فاسق، فاجر ہو تو وہ قرآن پڑھا کر کے بھی طالب علم کو کافر بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصول یاد رکھیں۔ اب قرآن سے زیادہ اچھی تو کوئی کتاب نہیں ہو سکتی نا، جب قرآن پڑھا کر کے کسی کو کافر بنایا جا سکتا ہے تو پھر اسلامیات کی کتاب کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی اسلامیات کی کتاب میں تو آپ جو چاہیں وہ ڈال دیں بیچ کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی اصول ہے، قرآن کے اندر بہت ساری چیزوں کو آپ گھما پھرا کر کے، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر کے، ٹھیک ہے نا، ایسے طریقے سے اپنے طالب علموں کو بتا سکتے ہیں کہ جس سے کہ وہ دین سے متنفر ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ صحابہ سے متنفر ہو جائیں، وہ نبی علیہ السلام سے متنفر ہو جائے، یا وہ اوور آل عقائد سے متنفر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے، ٹیچر پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلامیات کی کتاب جو ہے وہ موٹی ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے کہ اسلامیات پڑھانے والے کون لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ان کی سلیکشن جو ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے ہوتی ہے، اپنے حساب سے وہ ٹیچر سلیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرمایا انہوں نے کہ مومنین صالحین کے لیے، خیر آخری پیراگراف دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، کہ آج کل کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت وہ لوگ جو کچھ نئی تعلیم کی نحوست سے دین و آخرت سے بے فکر ہو چکے ہوتے ہیں، خدا اور رسول پر ایمان برائے نام رہ جاتا ہے، وہ علماء و صلحاء کے ساتھ بعین ہی اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ حق تعالی مسلمانوں کو اس عذاب علیم سے نجات عطا فرماویں، ٹھیک ہے، یہ جو عذاب ہے نا ہمارے اوپر کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اندر جو ہے وہ میجورٹی ایسے لوگوں کی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی ایسے لوگوں کو ظاہر ہے ہمارے اوپر حکمران بھی پھر ایسے لوگ بنتے ہیں جو کہ ہمارے درمیان ہی ہمارے جیسے ہی ہیں، وہ لوگ کوئی ہم سے مختلف نہیں ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں، اس وجہ سے ہمارے مسلمان بھی، ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب ہے، جو ہمارے حکمران ہیں نا، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا کی سزا ہے، ہمارے اوپر عذاب ہے۔ مومنین صالحین کے لیے اس آیت میں تسلی کا کافی سامان ہے کہ ان کے ہنسنے کی پرواہ نہ کریں۔ کسی نے خوب کہا ہے، ہنسے جانے سے جب تک ہم ڈریں گے زمانہ ہم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے ایمان والے نہیں گھبرائے کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور جنت کے شوق میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ مدد کا معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ پھر تو بچوں کے اسکول کا انتخاب کیسے کریں؟ بچوں کے اسکول کا انتخاب جو ہے وہ کرتے ہوئے لیسر آف دا ٹو ایولز والا اصول سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، کہ جب دو برائیاں ہوتی ہیں تو ان میں سے جو چھوٹی برائی ہوتی ہے نا، تو اس کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اسکول میں ڈالنا ہی ہے بچوں کو، ٹھیک ہے، مدرسے میں نہیں بھیج سکتے، جو بھی ریزنز ہیں، سوشل ریزنز ہیں یا اکنامک ریزنز ہیں یا واٹ ایور کیریئر ریزنز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ مدرسے وغیرہ میں تو نہیں ڈال سکتے، تو اسکولوں میں ڈالنا ہے، تو اسکولوں میں ڈالنے کے لیے جو ہے نا وہ سب سے کم برائی والا اصول والا اسکول جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں پھر دیکھنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، آپ کو اسکول ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا چاہیے، اسکول میں جو ٹیچرز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اسکول میں کیا بکس پڑھائی جاتی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور جو دوسرے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں اور کیا عموماً ماحول ہے اسکول کا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں پھر یعنی اچھی خاصی جو ہے وہ تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو کہ اپنے بچوں کے اسکول کو سلیکٹ کرنے سے پہلے بہت تحقیق کرتے ہیں، اور ان کی پرائیورٹی جو ہوتی ہے وہ دین ہی ہوتی ہے اور ایمان ہی ہوتا ہے، تو ایسے اسکولوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ دین اور ایمان کی حفاظت ہو سکے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا کی تعلیم بھی چل رہی ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جی سب سے زیادہ جو گھٹیا اسکول ہے اسی کو، یعنی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے سب سے برا اسکول ہی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ایسا بھی نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ایک ماڈریٹ لیول آف کمپرومائز جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے آپ کو، یعنی پرائیورٹیز ہی سیٹ کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کو اگر نمبر ون پرائیورٹی بنائیں گے
तो फिर तो आपको यानी ऐसे स्कूल में भेजना पड़ेगा कि जहाँ पर ईमान की हिफाजत मोस्ट लाइकली नहीं हो सकती। ठीक है, देखें स्कूल जो है ना, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कि आप उस यानी एटलीस्ट दिन के अंदर 6 से 7 घंटे तो वो स्कूल के अंदर रहता है, और जब वो स्कूल से निकल करके आपके घर में आता है तो फिर भी वो वर्चुअली स्कूल के अंदर ही रहता है, क्योंकि स्कूल से जो होमवर्क्स लेकर के आता है, असाइनमेंट्स लेकर के आता है, या जो भी जो है वो वहां से वो सीख करके आता है, तो वो बाकी वक्त पे जो है ना वो उसी तरबियत के उसी तालीम माहौल के साथ ही रहता है घर के अंदर। ठीक है ना, तो ये जो स्कूल है ना, ये बच्चे के लिए बहुत ही डिसिसिव किस्म की चीज है। तो इसमें अगर आपने डाल दिया है किसी ऐसे स्कूल में कि जहां पर कि बिल्कुल काफिरों वाला माहौल है या काफिरों ही का स्कूल है, जैसे कि आप में से अक्सर जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप लोगों को मैंने एक हैदराबाद दक्कन के एक मौलाना साहब हैं मुफ्ती साहब, तो उनका बयान अभी फॉरवर्ड भी किया है पिछले हफ्ते, कि जिसमें उन्होंने अपने स्कूल्स बनाने के ऊपर बहुत बात करी है, मुसलमानों के स्कूल्स। ठीक है, इसलिए कि जब मुसलमान बच्चे जो हैं वो हिंदुओं के स्कूल में जाते हैं या क्रिश्चियंस के स्कूल में जाते हैं, तो वहां पर जाकर के ना इनका ईमान सलामत नहीं रहता। ठीक है, वो यानी उनकी बुनियादें हमने बनाई भी नहीं होती हैं घर में, तो जो पहली बुनियादें नहीं बनी हुई हैं तो वैसे ही वो बेस लेस होते हैं, बुनियाद लेस होते हैं, तो ऐसे स्कूल में जा करके वो बिल्कुल ही जो है ना वो काफिरों के तरीके के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं। और अगर बुनियादें बनाई भी होती हैं हमने, तो हमारी बनाई हुई बुनियादें जो है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं कि स्कूल में इतना टाइम स्पेंड करने के बावजूद वो बुनियादें कायम रहें। ठीक है, बुनियादों को उखेड़ा भी जा सकता है, और ये स्कूल वाले जो हैं ये ट्रेंड होते हैं। ठीक है ना, इन्होंने बाकायदा जो जो बीएड किया होता है, एमएड किया होता है, साइकोलॉजी भी पढ़ी होती है अक्सर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने, तो ये जो किताबें लिखते हैं ना ये साइकोलॉजिस्ट लेवल के लोग लिखते हैं। ठीक है ना, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के लोग लिखते हैं, उनको पता होता है कि किसी के बच्चे की किसी बच्चे की जहन साजी और दिल साजी कैसे करनी है। ठीक है, तो आपने क्या उस बच्चे को जो है वो 4 कलमे याद दिलाए होते हैं, याद कराए होते हैं, और थोड़ा बहुत जो है वो कायदा जो है वो कारी साहब के जरिए से पढ़वा रहे होते हैं, उससे कोई बुनियादें को थोड़ी बननी होती है बच्चे की। ठीक है, बुनियाद बनाने के लिए तो वालिदैन के अपने ईमान का कुछ दर्जा होना चाहिए, कुछ लेवल होना चाहिए, उनके अपने ईमान का अच्छा लेवल होगा तब कहीं जाकर के बच्चे की बहुत सॉलिड ईमानी बुनियादें बनेंगी। लेकिन हमारे ईमान का ये हाल नहीं होता, हमने चंद जाहिरी बातें रटा दी होती हैं बच्चों को, और चंद जाहिरी इबादत सिखा दी होती हैं, इससे बुनियादें तो थोड़ी बनती हैं। तो बगैर बुनियाद के, बिला बुनियाद जो है हम इन स्कूलों में भेज देते हैं और समझते हैं कि जी हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और फिर हमारी अपनी हरकतें ऐसी होती हैं कि हम बच्चों को अपनी हरकतों से बार बार ये मैसेज दे रहे होते हैं कि देखो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो स्कूल के अंदर अच्छे ग्रेड्स लाना है। ठीक है, हमारी यानी हम अनस्पोकन तरीके से, अगर ये मैं उन बहुत दीनदार लोगों की बात कर रहा हूं, दुनियादार लोगों की बात नहीं कर रहा, दुनियादार लोग जो है ना वो अनस्पोकन तरीके से मैसेजेस नहीं देते, वो तो आउट लाउड अपने बच्चों को मैसेज देते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक तुम्हारी नमाज जाए, तुम्हारा रोजा जाए, तुम्हारा हज जाए, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारी हया जाए, तुम्हारी पागदामनी जाए, आई डोंट केयर, तुमने अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। ठीक है ना, तो ये किसके अल्फाज होते हैं, ये तो दुनियादार लोगों के अल्फाज होते हैं, दीनदारों के ये अल्फाज नहीं होते। लेकिन दीनदार क्या करते हैं, दीनदार जो हैं वो हिडन मैसेजेस दे रहे होते हैं अपने बच्चों को कि देखो तुमने अपने एग्जाम में ग्रेड्स लाने हैं, अगर उसके लिए तुम्हें दीनी जो तुम्हारे हमने मामला चलाए हुए हैं ना, ठीक है, जैसे कारी साहब से तुमने कुरान पढ़ना है, तुमने जो है वो कहीं पे जाकर के कोई और चीज सीखनी है, या कोई दीनी किस्म की गैदरिंग है जिसमें कि तुम जाते हो, ठीक है, तो तुम इस गैदरिंग को छोड़ देना। ठीक है, तुम इस कारी साहब वाले सेशन को हम तुम्हारा छुट्टी करवा देंगे। ठीक है ना, तुम हम तुम्हारी जो है ना ये जो दीनी एक्टिविटीज हमने स्टार्ट कराई हुई है, ये दीनी एक्टिविटीज जो है तुम बाद में कर लेना, अभी तुम एग्जाम दे लो। ठीक है ना, अभी एग्जाम के अंदर अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए। तो ये जो हम मैसेजेस दे रहे होते हैं ना अपने बच्चों को, ये अनस्पोकन तरीके से दे रहे होते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों के भी लाशऊर में ये मैसेजेस आ रहे होते हैं, बल्कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो लाशऊर से फिर वो शऊर में यानी एक्सप्लिसिटली भी वो मैसेज समझना शुरू हो जाते हैं कि मेरे बाप के लिए असल प्रायोरिटी जो है वो मेरी दुनिया है, मेरे बाप के लिए असल प्रायोरिटी दीन नहीं है। हाँ, बहुत बड़े दीनदार तो वो बनते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से बनते हैं, असल में इनके दिल में दुनिया की ही अजमत है, दुनिया की ही इज्जत है। ठीक है ना, तो बच्चे जो है ना ये चीजें पिक करना शुरू कर देते हैं, उनको पता लग जाता है। ठीक
कि बाप अब्बा हुजूर की असल प्रायोरिटी क्या है, ठीक है ना। तो ये तो है बच्चों का मामला कि वो भी पिक कर लेते हैं, और असल मामला तो किसका होता है, असल मामला तो परवरदिगार का मामला होता है ना, ठीक है ना। तो परवरदिगार को तो ये हिडन मैसेजेस की जरूरत भी नहीं होती, परवरदिगार तो दिलों के हाल वैसे ही जानते हैं, राइट। अल्लाह ताला तो दिलों के हाल और आंखों की जो हमारी, अल्लाह ताला को तो मालूम है ना कि हम चाहते क्या हैं असल में, राइट। ऊपर ऊपर से तो हम खुद भी दीनदार बनना चाहते हैं और उनको भी दीनदार बनाना चाहते हैं, लेकिन हम किस चीज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं और किस चीज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ये हम अपने रब से तो नहीं छुपा सकते ना, हैं? परवरदिगार से छुपा सकते हैं इस बात को? परवरदिगार को तो इन हिडन मैसेजेस की भी जरूरत नहीं है, वो तो बच्चों को जो है वो हिडन मैसेजेस से बात बात में जाके समझ में आती है, अल्लाह ताला को सब पता है ना। तो जब अल्लाह ताला ये बात देख रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी नेमत को के साथ ये क्या कर रहा है, तो आपका क्या ख्याल है वो नेमत बरकरार रखेंगे अल्लाह ताला हमारे पास है? वो फिर भी हम हमें जो है वो हमारे ऊपर वो जो तो हिदायत की नेमत है और दीन की जो नेमत है और आखिरत की जो नेमतों की नेमत है, राइट, वो फिर भी हमारे ऊपर चिपका के रखेंगे। अल्लाह ताला बहुत बहुत गैरतमंद है, ठीक है ना, ये बात याद रखें, अल्लाह ताला सबसे बड़े गैरतमंद हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला की गैरत को जब हम ललकारते हैं ना, तो अल्लाह ताला को आता है गुस्सा, ठीक है, अल्लाह को आता है गुस्सा। और जब अल्लाह को गुस्सा आ जाता है ना किसी के ऊपर, फिर उसके बाद कोई नहीं बचा सकता उसको, ठीक है ना। फिर पीर साहब के पास भागने से फायदा नहीं होता कि पीर साहब मुझे बचा लें, राइट, भागते हैं उसके बाद पीर साहब मुझे बचा लें, राइट, पीर साहब नहीं बचा सकते आपको, ठीक है। अल्लाह ताला को जो आपने गुस्सा दिला दिया है ना अपनी हरकतों से, अपनी प्रायोरिटीज को मैसअप करके, तो बस अब गए आप, ठीक है ना। अब आपने अल्लाह ही से तौबा करनी है, अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया है, ठीक है ना। अल्लाह ताला रहम करीम है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं करते जब तक आखिरी वक्त ना आ जाए, तो अल्लाह ताला से तौबा कर लें, अल्लाह ताला माफ कर देंगे और अपनी इस रविश को तब्दील कर लें, ठीक है ना, अपनी रविश को तब्दील कर लें, दुनिया को जो है वो सेकंड प्रायोरिटी दें। हम ये नहीं कह रहे कि दुनिया को खत्म कर दें, ठीक है ना, गारों में जाकर के रहना शुरू हो जाएं और जो है वो पढ़ना लिखना छोड़ दें और ये भी करना छोड़, सब कुछ करना छोड़ दें, नहीं भाई, करें सब कुछ, करें जरूरत के दर्जे में करें, सेकेंड प्रायोरिटी के तौर पर करें, बेशक करें, ठीक है ना, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो दीन होनी चाहिए ना, फर्स्ट प्रायोरिटी तो आखिरत होनी चाहिए ना। तो बस इतनी आसान सा मामला है। तो अगर कोई इस किस्म की गलती कर रहा है ना, तो जरा अपने गरेबान में झांक करके देख ले कि वो ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या अल्लाह ताला के सामने जस्टिफाई कर सकते हैं, क्या हम जो है वो अपनी टाइम शीट भरते हैं ना ऑफिस के अंदर, ये हमने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों किया, ये काम क्यों किया, फिर बॉस को दिखानी होती है वो टाइम शीट, राइट, वो सबमिट करनी होती है टाइम शीट ना, वो पूछता है कि अच्छा ये वाला आपने टाइम जो है क्यों लगाया, इधर क्यों लगाया, ये एक्टिविटी क्यों करी, ये एक्सपेंडिचर जो आपने किया ये इधर क्यों किया, ठीक है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले भी पूछ लेते हैं आकर के कि इधर क्यों किया, इधर क्यों किया, इधर क्यों किया, ठीक है। तो भाई परवरदिगार ने अगर हमारी टाइम शीट खोल ली, ठीक है, अगर हमारा नामा अमल खुलवा दिया उस दिन क्यामत के दिन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था पिछली वाली सूरत की तफसीर के अंदर कि जिसका नामा अमल खुल गया तो फिर वो नहीं बचेगा, ठीक है। तो उसका बहुत आसान हल है कि इस दुनिया की जिंदगी में तौबा कर लें, ठीक है ना, गलती को तस्लीम कर लें, माफी मांग लें अल्लाह ताला से और अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर लें। बाकी ये कि गुनाह तो हमसे यानी बशर होने की वजह से गुनाह तो फिर भी होते रहेंगे, लेकिन गुनाह के ऊपर कम से कम इसरार तो ना करें ना, बस तौबा कर लें, जो गुनाह होता है उसे उसके ऊपर अल्लाह ताला से तौबा कर लें, अल्लाह ताला यकीनन हमारी तौबा कबूल करेंगे। बल्कि अल्लाह ताला तो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कि अत्तायबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह ताला अपना महबूब बना लेते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस पढ़ने को, इस वक्त लगाने को कबूल फरमाए, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं कुरान की तफसीर में से इसको समझ करके अमल करने की इसके ऊपर तौफीक अता फरमाए, और इसमें से किसी भी चीज़ को हमारे खिलाफ बतौर हुज्जत के इस्तेमाल ना फरमाए। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم